सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् केवलनानुजोय छद्दवमणिज्यं पवाहि नमिऊणजिणं भणिमो दौवणियोगम गणीय सारम। यह श्री धवला टीका है जो वीरसेन आचार्य रचित है, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ पर यह रचना की थी, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार षटखंडागम की रचना की थी, और यह उपदेश हमें महावीर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह हम तीसरे पुस्तक के शुरुआत करते हैं, पृष्ठ संख्या एक पर। अभी हमने मंगलाचरण देखा था, कहा था, उसी पृष्ठ पर से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओम श्री भगवंत पुफदंत भूदबली पणिदे शखंडागमे जीवठाणम तस्स, यानी श्री भगवान पुष्पदंत और भूदबली प्रणित, पणिदे ने प्रणित यानी उन्होंने बताया हुआ जो षटखंडागम ग्रंथ है, उसमें जीवस्थान में उसके जीवस्थान के श्री वीरसेनाइरिय विरैया टीका, श्री वीरसेन आचार्य विरचित टीका, उसका नाम है धवला। जब ग्रंथ कहेंगे तो धवल ग्रंथ कहते हैं, और टीका है तो धवला कहते हैं, कहीं कहीं धवल भी आता है, धवल जय धवल महाधवल ऐसा भी लिखते हैं। तो टीका स्त्रीलिंगी शब्द है तो धवला ऐसा उसमें लिखते हैं, यहाँ तो हर जगह धवला लिखा है, कहीं कहीं धवल ऐसा भी आता है। अब हमने जो मंगलाचरण देखा है उसी का अर्थ नीचे देखते हैं। देखो, जिन्होंने केवल ज्ञान के द्वारा छह द्रव्यों को प्रकाशित किया है, प्रकाशित किया है ने जाना है, प्रकाशित किया ने उसके ऊपर टॉर्च के द्वारा लाइट डाला, ये ज्ञान का लाइट नहीं होता है, तो ज्ञान में जाना है। केवल ज्ञान के द्वारा छह द्रव्यों को जिन्होंने जान लिया है, और जो प्रवादियों के द्वारा नहीं जीते जा सके, वादी यानी अपोजिशन और प्रवादी यानी वो विशेष, ऐसे वादी प्र शब्द से वो प्रचुरता उसकी ख्याल में आती है, तो वादियों के द्वारा कहो या प्रवादियों के द्वारा नहीं जीते जा सके, क्योंकि हमने देखा है तो अनेक अलग अलग मत मतांतर की रचना होती है, कोई जीव ऐसे अपने स्वयं की मति कल्पना से ईश्वर का स्वरूप जगत का स्वरूप कहते हैं, परंतु इन वादियों के द्वारा जो जगत का या विश्व का स्वरूप बताया जाता है वह तो है ही नहीं है। तो कहते हैं कि प्रवादियों के द्वारा नहीं जीते जा सके ऐसे जिनेन्द्र देव को मैं वीरसेन आचार्य नमस्कार करके, देखिए आचार्य है, भावलिंगी संत है, फिर भी वो सबसे प्रथम जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, गणित की जिसमें मुख्यता है ऐसे द्रव्यानुयोग का प्रतिपादन करता हूँ। यहाँ जो द्रव्यानुयोग लिखा है वो द्रव्यानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग और प्रथमानुयोग वाला अनुयोग नहीं है। द्रव्य की संख्या, द्रव्य ने अकेले द्रव्य की संख्या नहीं, द्रव्य का ही अर्थ होता है प्रमाण संख्या, क्योंकि हमने देखा था ना कि गणना में भी जो हम माप देते तो द्रव्य की, द्रव्यमान क्षेत्रमान कालमान भावमान ऐसा भी हमने देखा था माप, यानी किसी की संख्या बता देना उसी को कहेंगे वो द्रव्यानुयोग है। पहला हमने सत प्ररूपणा देखी है, अभी यहाँ संख्या, सत संख्या हमने देखी थी ना, हाँ क्षेत्र स्पर्शन काल वगैरह वगैरह, काल अंतर भाव और अल्पभूतव, ऐसे जो अधिकार हम देखने जा रहे हैं उसमें से सत वाला हमने देख लिया, पहला और दूसरा पुस्तक, और अभी तृतीय पुस्तक में अभी यहाँ संख्या का अधिकार चलेगा, संख्याएं बताएंगे गणितों के द्वारा। यानी वहाँ हमने क्या देखा है, तो जीव कहाँ है, जीवों की अस्थि देखी है, कहाँ है तो गुणस्थानों में देखी और मार्गणावस्थानों में देखी। अब जो गुणस्थानों में और मार्गणास्थानों में हमने देखी ना, अलग अलग प्ररूपणाएं लगाई, 20 प्ररूपणा, लेशा कौन सी है, योग कौन से है, अभी उसमें संख्या कितने जीवों की है वो देखेंगे। तो यहाँ अभी संख्या का अधिकार चलेगा। तो कहते हैं इसका द्रव्यानुयोग का प्रतिपादन करता हूँ। द्रव्यानुयोग कहो, अनुयोग है नहीं, या वो प्रमाण की बात है, उसको भी यहाँ बताएंगे। इसी का विशेषार्थ करते हैं। द्रव्यानुयोग का दूसरा नाम द्रव्य प्रमाणानुगम या संख्या प्ररूपणा है। द्रव्य प्रमाण अनुगम, अनुगम यानी वो ज्ञान। तो उसके पहले अनु क्यों लिखा, अकॉर्डिंगली फॉलोइंग, जैसे केवल ज्ञानियों ने बताया है उसके अनुसार है, इसलिए उसको अनुगम कहा। देखो वो बात आएगी आगे। देखो द्रव्यानुयोग का दूसरा नाम, ये हम जो द्रव्यानुयोग यानी परमागम वो द्रव्यानुयोग, उसकी बात यहाँ नहीं है, है ना। तो द्रव्यानुयोग का ही दूसरा नाम क्या है, द्रव्य प्रमाणानुगम यानी प्रमाण, द्रव्य का प्रमाण, या संख्या प्ररूपणा है। यहाँ संख्याएं बताई जाएगी। यद्यपि द्रव्य छह है, फिर भी इस अधिकार में गुणस्थानों और मार्गणास्थानों का आश्रय लेकर केवल जीव द्रव्य की संख्या का ही प्ररूपण किया गया है। छह द्रव्यों की संख्या बताने का यहाँ प्ररूप प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये जीव के बारे में ही सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पहले में पहले जीवों में वो सत हमने देखा था, जीव कहाँ कहाँ है उसकी चर्चा की, तो कहाँ कहाँ है देखा, अब वो कितने कितने हैं उसकी बात यहाँ चलेगी। तो छह द्रव्य है, फिर भी यहाँ संख्या या अन्य द्रव्यों की नहीं बताएंगे, परंतु जीव की ही संख्या बताएंगे। यहाँ लिखा ना नीचे, जीव द्रव्य की संख्या का ही प्ररूपण किया गया है। जिन्होंने 14 गुणस्थानों के अस्तित्व को जान लिया है, हमने जाना कि नहीं जाना, जाना है। कैसे जाना, आगम के द्वारा जाना है। ये हमने नहीं जाना ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हम 14 गुणस्थान कौन से, उनके नाम क्या है, कौन से गुणस्थान से जीव कहाँ जाता है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी लेशा होती है, क्या होता है, वो सब हमने देखा, कौन कौन सी गतियों में कौन कौन से गुणस्थान, यानी हमने भी 14 गुणस्थानों को जान लिया है। तो 14 गुणस्थानों के अस्तित्व को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे शिष्यों को, यानी हमारे जैसे लिए ना, कि 14 गुणस्थानों को जिसने जान लिया है ऐसे शिष्यों को, अब उन्हीं 14 गुणस्थानों के अर्थात 14 गुणस्थानवर्ती जीवों के परिमाण, परिणाम नहीं लिखा, परिमाण लिखा है, परिमाण यानी प्रमाण यानी संख्या, तो उसके संख्या के ज्ञान कराने के लिए भूत बलि, वो भूल बलि हुआ है, वो भूत तो करना, उसको ल का त तो कर देना नीचे से तीसरी लाइन में, भूत बलि आचार्य चाहिए। प्रस्तावना के बाद पृष्ठ संख्या एक, हाँ। देखो नीचे के सूत्र के ऊपर की तीन लाइन हम फिर पढ़ते हैं। अभी शास्त्र का प्रयोजन यहाँ बता देते हैं, जो विशेषार्थ लिखा है ना उसके नीचे पिना, जिन्होंने 14 गुणस्थानों के अस्तित्व को जान लिया है ऐसे शिष्यों को, यानी हमें, हमने जान लिया है, हम भी शिष्य है, तो अब उन्हीं 14 गुणस्थानों के अर्थात 14 गुणस्थानवर्ती जीवों के परिमाण यानी प्रमाण अर्थात संख्या के ज्ञान कराने के लिए भूतबलि आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। हमने वो पहले जाना ही था, तो ये पहले पांच खंड तो भूतबलि आचार्य से रचित है। यह भूतबलि आचार्य की नहीं, वो सत प्ररूपणा है, वो पुष्पदंत की है, और आगे वाली है भूतबलि आचार्य की। हमने पहले देखा था वो पहले भाग में, उसकी प्रस्तावना या इसकी भी प्रस्तावना आप पहले फिर पढ़ लेना उसके साथ मिलान करके।
यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखें ना, यहाँ लिखा है कि 14 गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या, यानी पहले गुणस्थान यानी मिथ्यात्व जीव कितने होंगे, दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव कितने होंगे, ऐसे जीवों के प्रमाणों की बात यहाँ पर चलेगी। और आपको लगेगा वो तो क्या एक एक लाइन में है कि मिथ्यात्व के जीव अनंत है, अभी उसमें इतना बड़ा शास्त्र क्यों लिख रहा है, ऐसा मन में आपके संदेह न होवे तो धैर्य रखकर आगे चले।
और गणित है इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं।
हाँ,
ख्याल है ना,
आते वक्त दो दो नैपकिन लेके आना पसीना पोंछने को
क्योंकि हमने संदृष्टि अधिकार भी यहाँ पढ़े थे और उसमें भी चले, हम तो अभी तक जिंदा है हा? तो इसमें भी ये तो गण <इने... laughs> कोई बात नहीं, बहुत ये संख्याएं बताइए। अभी हम गुणस्थानों में संख्या बताएंगे और गुणस्थानों में हम मार्गणा भी लगाए, जैसे पहले गुणस्थान में हमने 14 प्ररूपणाएं लगाई थी तो गुणस्थानों में मार्गणा कहेंगे, इंद्रिय मार्गणा काय मार्गणा उसकी अपेक्षा से संख्या कहेंगे। मिथ्या तो गुणस्थान में तो एक इंद्रिय जीव भी है, दो इंद्रिय भी है, तीन इंद्रिय भी है, चार इंद्रिय भी है, पंच इंद्रिय भी है, फिर उनकी अलग अलग संख्या बताएंगे। तो ख्याल तो आवे कि अनंत जीव है तो कहाँ कहाँ है और कितने कितने हैं, ख्याल है ना।
ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही है आपको डराने के लिए नहीं, आपका धैर्य जुटाने के लिए
नहीं, आसान है
आधे, आधे रास्ते से कोई भाग नहीं जावे। आप तो जानते हैं 15 जन थे हम, अभी कितने बच गए
काफी है।
कोई बात नहीं, हम एक भी होंगे तो पढ़ेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको तो कंसिस्टेंटली आना है, बस इतना ही करना है, बाकी तो दिमाग में घुस जाएगा अपने आप।
अब हम यहाँ पहला सूत्र कहेंगे, पहले सूत्र पढ़ेंगे फिर नीचे उसका अर्थ देखते हैं। देखो सूत्र इस लाइन के ऊपर लिखा है, दौव प्रमाणानुगमेण दुविहो निर्देशो ओघेण आदेशेण य, यानी द्रव्य प्रमाणानुगम से दो प्रकार का दुविध यानी दो प्रकार का निर्देश होता है, एक ओघ के द्वारा और एक आदेश के द्वारा। अब ओघ और आदेश ये शब्द हमने पहले सुने थे कि नहीं सुने थे, सुने थे, सुने तो थे, इतना तो याद आ गया, अब उसका अर्थ भी याद करेंगे। हाँ अर्थ, हाँ ओघ यानी गुणस्थान और आदेश यानी मार्गणा स्थान। ओघ के लिए दूसरा भी एक शब्द हमने देखा सामान्य, और मार्गणा यानी विशेष, गुणस्थानों में ही उसकी अनेक विशेषताएं बताना, उसको मार्गणा कहा था हमने। तो ओघ कहो या सामान्य कहो या गुणस्थान कहो एक ही बात है, और आदेश कहो विशेष कहो मार्गणा कहो एक ही बात है। तो यहाँ नीचे उसका अर्थ दिखा है, देखो द्रव्य प्रमाणानुगम की अपेक्षा यानी संख्या प्ररूपणा की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, निर्देश यानी कथन, दो प्रकार का कथन आएगा, कैसा, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, वो न का नी कर देना, अंतिम लाइन में निर्देश हुआ है उसको निर्देश करना, निरस्व पहली नी यानी गुणस्थानों में भी कथन होगा और मार्गणा स्थानों में भी कथन होगा उसका, संख्याओं का। कैसे काल की अपेक्षा, हाँ देखो आपका ऐसा प्रश्न है, जो प्ररूपणा उन्होंने 400 साल पहले की थी, क्या ये 400 साल पहले वाली प्ररूपणा है, ये बताया किसने, महावीर भगवान ने। तो महावीर भगवान तो समझो 2500 साल पूर्व हो गए, तो 2500 साल पूर्व की ये प्ररूपणा है क्या, अनादि अनंत ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ख्याल है ना। वहाँ ऐसी प्ररूपणा करेंगे तो पंचम काल में भरत क्षेत्र में ऐसा होगा, ऐसा अगर अलग कहेंगे क्या है, या कहेंगे मनुष्य कहाँ होते हैं, मनुष्यों की संख्या कितनी है, तो मनुष्यों में हम तो ढाई द्वीप में जितने सब क्षेत्र है सबको लेना, उसमें अंतर द्वीपज मिलेंची, इसने यानी कुभोग भूमि भी होगी, भोग भूमि भी होगी, भोग भूमि में उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, और अकेले जम्बू द्वीप के नहीं, जम्बू द्वीप में भी है, जातकी खंड में भी है, अर्ध पुष्कर में भी है, तो सब जगह जहां जहां है, तो फिर वहाँ भरत भी है, ऐरावत भी है, यानी पांच भरत है, पांच ऐरावत है। विदेह क्षेत्र कितने कितने हैं? एक एक मेरु संबंधी आठ चौक 32 विदेह है, यानी 108 टोटल विदेह हो गए। तो सब 160, मैंने कितना कहा, 60 कहना था मुझे, 160 पांच मेरु है तो उसके टोटल 32 × 5 160 हो गए टोटल, ख्याल है ना। तो इतने सब मनुष्य क्षेत्र है और ये तो पर्याप्त मनुष्य हम गिन देख सकते हैं, गिन सकते हैं, और अपर्याप्त मनुष्य तो कितने हो गए, जो लब्धि अपर्याप्त सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। ये तो हम अभी भारत की लोक संख्या कितनी है, तो ये हम पर्याप्त मनुष्यों को देख रहे हैं, ख्याल है ना। तो मनुष्य में तो मनुष्य जीव जब कहेंगे, जो गर्भावस्था में है ये जो कुछ है वो सब सब टोटल मनुष्यों के जीव यहाँ गिनाएंगे, तो उसमें फिर गुणस्थानों में गिनती करेंगे, वो तो बात आएगी।
मेरा एक प्रश्न है कि मनुष्य मिथ्या दृष्टि कितने हो सकते हैं, मनुष्य मिथ्या दृष्टि कितने हो सकेंगे? हाँ जी आनंद, आप कितना कहते हैं? उन्होंने तो अनंत बता दिया, अभी संख्यात भी है असंख्यात भी
आप
है।
आप क्या कहते हैं? संख्यात हो गया। हाँ
संख्यात।
हाँ अरविंद भाई कहते हैं पर्याप्त संख्यात है,
सब लोग
तो टोटल
पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं।
हाँ
एक मिनट, आप बोलो बेन,
विचार करो,
विचार करो ना,
ये क्या गलती तो गलती है अपने, क्या
विनोद भाई आप कुछ
विचार कर,
संख्यात डॉक्टर साहब आप कुछ बोलो,
प्रेरणा बेन को नहीं बोलना कुछ,
असंख्यात और कोई बाकी रह गया? सोचा नहीं है,
किसकी पर्याप्तों अपर्याप्त कितने हो गए लब्धि अपर्याप्त जो मनुष्य है वो असंख्यात होते हैं,
अनंत होते हैं,
असंख्यात होते
हैं, हाँ असंख्यात होते हैं, सॉरी पर्याप्त संख्यात है,
पर्याप्त जीव तो संख्यात है, 29 अंक प्रमाण हमने देखा था पहले, तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य कहने से वो असंख्यात हो जाएंगे। हाँ लब्धि अपर्याप्त तो सभी मिथ्या दृष्टि ही है, ख्याल है ना। अब वो सम्यक दृष्टि कितने होंगे, वो संख्या आएगी ना आगे, ये सब यही तो पढ़ना है हमें अभी इसमें। तो पहले में द्रव्य प्रमाणानुगम शब्द आया सूत्र में, जो जो शब्द आए ना अभी हमने देखा था, देखो क्या क्या आया है कि द्रव्य प्रमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, आदेश निर्देश और ओग निर्देश और आदेश निर्देश। अभी इसमें वो एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। द्रव्य प्रमाणानुगम पहले में पहले द्रव्य शब्द से शुरू करेंगे। तो दो पृष्ठ पर कोई आए ना अभी अंदर, अच्छा जो देखो द्रव्य की परिभाषा बता रहे, जो पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ है उसे द्रव्य कहते हैं, यानी द्रवती इति द्रव्य। द्रवती यानी क्या, उसका पर्याय का प्रवाह हर समय चलता रहता है, अनादि से अनंत काल तक उसमें से पर्याय निकलती ही रहती है, निकलती रहती है, यानी निकलती रही थी, निकलेगी और निकल रही है वर्तमान में भी, उसको द्रव्य कहना। हमने भी पहले पढ़ा था कि अनादि अनंत पर्यायों का समूह उसको हम द्रव्य कहेंगे, गुणों के समूह को द्रव्य कहते ही है, गुण पर्यायवत द्रव्यम जब कहा है तो वहां गुणों की अपेक्षा से कथन किया था, अब पर्यायों की अपेक्षा कहना है तो द्रव्य क्या है, तो हर समय एक एक कोई न कोई अवस्था उसकी रहती है, तो अवस्था से रहित कभी वो होगा ही नहीं है। तो अभी हमको द्रव्य को देखना है, तो जो हमेशा किसी न किसी अवस्था रूप से रहता है उसको द्रव्य कहेंगे। तो यहाँ उसकी परिभाषा क्या लिखी, देखो, जो पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ है उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा पर्याप्त पर्याय प्राप्त की जाती है, यानी वो द्वारा यानी तृतीय करण लगाए, उसमें तृतीय विभक्ति लगाए, अर्थ वही है जो पर्याय को प्राप्त होता है कहो, कर्ता रूप से बताया, द्रव्य स्वयं अपने पर्याय को प्राप्त होता है। यहाँ भी इसे द्रव्य के द्वारा पर्याय प्राप्त होती है, यानी अर्थ तो वही है, कथन करने की पद्धति बदल गई। उसके द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा कहा कि जिसके द्वारा पर्याय प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाएगी और प्राप्त की गई थी उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य,
एक मिनट देखो, यहाँ पर तीनों काल का वर्णन किया हुआ है। पहले में जो बताया कि जो पर्यायों को प्राप्त होता है वह वर्तमान है, प्राप्त होगा वह भविष्य काल है, और जो प्राप्त हुआ है वैसा ही नीचे तीनों में ले लेना। यानी तीन काल में द्रव्य कभी भी पर्याय रहित नहीं होगा, इस बात की सिद्धि यहाँ होती है। ख्याल में ये जो बताना चाहते हैं वो एक एक सिद्धांत बताते हुए वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा हमारे ख्याल में आना चाहिए, इसलिए तो उसको टीका कहा है कि विशेष जो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं उससे कोई भी बात वस्तु स्वरूप से विरुद्ध नहीं है ना, इस बात की हमें ख्याल आ जाता है।
और इससे एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि द्रव्य अनादि अनंत है, ख्याल है ना, द्रव्य अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा। ये तो जो द्रव्य अनादि अनंत है, यानी हर समय उसकी पर्याय होती रहती है, यानी होती थी, हुआ कर रही है और आगे होगी, इससे द्रव्य की भी अनादि अनंतता सिद्ध हो जाती है। और हर समय कोई ना कोई पर्याय होती है ये भी सिद्ध हो जाता है, यानी द्रव्य हमेशा अपनी अपनी एक एक पर्याय के वर्तमान के वर्तमान के पर्याय उसमें विद्यमान है। फिर भी हमको द्रव्य, केवली भगवान ने द्रव्य को देखा है, कैसे देखा है, अनादि अनंत सभी उसकी पर्याय उनके ख्याल में आती है, क्योंकि द्रव्य ही उसको कहा, अनादि अनंत पर्यायों का समूह उसको द्रव्य कहा। तो केवली भगवान छह द्रव्य को जानते हैं, तो केवली भगवान प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत अवस्थाएं जानते हैं, यानी हम द्रव्य है तो हमारी भी अनादि अनंत अवस्था, उसी को तो हमारा द्रव्य कहेंगे हम। केवली जाना है केवली ने, इसलिए हमारी अवस्थाएं पराधीन नहीं हुई है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय अपनी अपनी अवस्थाएं सुनिश्चित है अनादि अनंत की, उसी को तो हम द्रव्य कहते हैं। यानी ये जो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा, ये स्वीकार करना, यही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसकी जो पर्याय को प्राप्त होता है कि दूसरा उसको कराता है, ऐसा लिखा है। हम कहते ना, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, वो तो इंजीनियर बनना चाहता था। यानी द्रव्य अपने पर्यायों को, द्रव्य अपने पर्यायों को प्राप्त होता है, यानी द्रव्य स्वाधीन है, स्वतंत्र है और वो अपने अपने पर्याय को प्राप्त होता है। कोई परद्रव्य उसको प्राप्त नहीं कराता है, कोई निमित्त आया इसलिए अभी उसने पर्याय प्राप्त किया, ऐसा ही नहीं है, क्योंकि उसकी अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित ही है। तो निमित्त नाम की जो पर्याय है वो भी उस विशिष्ट द्रव्य की पर्याय है, वो भी उसके प्रवाह क्रम में सुनिश्चित है। अभी उसका निमित्त रूप जो पर्याय है और हमारी जो पर्याय है उसका एक काल आया, तो हमने उस पर आरोप किया कि ये हमारे लिए उपकारी है, ये हमारे लिए सहायक है, ये निमित्त वाला। परंतु निमित्त नाम का जो कुछ पर्याय है, पर्याय निमित्त होती, द्रव्य निमित्त नहीं होता। कैसे, घड़ा बना, मिट्टी में से घड़ा बना, तो मिट्टी में घट रूप पर्याय वो मिट्टी में ही सुनिश्चित है, वो उसके अनादि अनंत पर्याय में घड़ा बनने का कार्य जिस समय है, उसी समय वहाँ कुम्हार, कुम्हार को हमने निमित्त कहा। परंतु कुम्हार को निमित्त है तो हम अभी आसानी कहने के लिए आसान हो इसलिए कुम्हार कह दिया, पर कौन सा कुम्हार, मिट्टी बनाने वाला कुम्हार, ये घड़ा बनाने वाला कुम्हार, कोई भी कुम्हार नहीं चलेगा, सोने वाला वो सोता हुआ कुम्हार नहीं चलेगा, खाना खाता हुआ कुम्हार नहीं चलेगा, मार गया है कुछ खरीदी करने के लिए, कपड़े वगैरह लेने के लिए, वो कुम्हार नहीं चलेगा। कौन सा, वो घड़ बनाने वाला कुम्हार। अनुकूल होने का आरोप किस पर आएगा, वो कुम्हार पर आएगा कि जो कुम्हार अभी घड़ बना रहे और दूसरा उसका फ्रेंड कुम्हार कोई बैठा है बाजू में, उसको नहीं कहेंगे हम, ख्याल है ना। तो ये उसके कुम्हार के जो घट बनाने रूप जो अवस्था चल रही है वो उसके अपने पर्याय क्रम में निश्चित है, इस तरह से यहाँ से हमको द्रव्य की स्वतंत्रता का भी ज्ञान हो जाता है कि द्रव्य हम उसी को कहते हैं कि जो स्वयं अपने पर्यायों को प्राप्त अभी तक अभी वर्तमान में हो रहा है, पहले भी हो चुका है और भविष्य में भी अपने पर्यायों को प्राप्त होता रहेगा। पर्याय उनसे खाली कभी नहीं होगा। कोई समझते ना, अभी सिद्ध भगवान हो गया, अभी सब कृतकृत्य हो गया, करने जैसा सब कुछ कर दिया, अभी कुछ नहीं करने का बाकी रहा। उनकी भी हर समय अपनी अपनी पर्याय होती रहेगी अनंत काल तक। यानी सिद्ध हुए अभी ज्ञान से रहित, तो ऐसे भी अनेक मत अन्य मत है कि ज्ञान से शून्य हो गए, सबसे शून्य हो गए, अभी अब कुछ करने का नहीं रहे, बस ऐसा है ही नहीं है। तो द्रव्य हम उसी को कहते हैं, वो हर समय जो द्रवता है यानी पर्याय रूप से वो परिणमित होता रहता है। हाँ, देखो आपका ऐसा प्रश्न है कि हर कार्य में निमित्त होता ही है, बराबर। तो सिद्ध भगवान में हो गए तो वहाँ कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या क्या हो रहा है? अभी प्रवचन सार में हमारा विषय चल रहा है, तो वो रहे, उनको अवगाहना किसने दी? आकाश द्रव्य है, अवगाहना में निमित्त है, अवगाहना उन्होंने स्वयं ली है, बराबर। अब वहां जाके वो सिद्ध पहले समय में यहां से ऊर्ध्वगति करके ऊपर गए, तो वहां उनको निमित्त कौन था? धर्म द्रव्य। और वहां स्थित हुए अधर्म द्रव्य, ख्याल है ना। अभी जो उनका परिणमन चल रहा है हर समय, हर समय अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है, उसमें काल द्रव्य निमित्त है, ऐसा लगा लेना हर एक में। अब वो जान रहे हैं, केवल ज्ञान के द्वारा पूरे लोकालोक को जान रहे हैं, तो पूरे लोकालोक में जो प्रदेशत्व गुण का कार्य चल रहा है जनाने का, प्रमेयत्व गुण का, तो वो प्रमेयत्व गुण के वो निमित्त कहेंगे हम उसको।
देखो आपका जो कह रहे हैं,
आपका ऐसा प्रश्न है, प्रश्न रिपीट करती हूँ मैं,
देखो
प्रश्न अच्छा। उनका रिपीट करेंगे, आपका ऐसा प्रश्न है, सिद्ध भगवान बने तो उनकी पर्याय एक सरखी हो रही है, वैसी की वैसी हो रही है, वही की वही नहीं है, वैसी की वैसी हो रही है, तो उसमें क्या सिमिलर हो रही है, तो उसमें कोई फर्क तो दिख ही नहीं रहा, ख्याल है ना। आप उत्तर देना।
देखिए, आप तो वो ये जरूर जानते कि वे केवल ज्ञानी है, हर समय वो पूरे लोकालोक को जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? तो अभी वो अश्विन भाई को जानते होंगे कि नहीं? अश्विन भाई को जानते हैं कि नहीं? अश्विन भाई को जान रहे हैं। अश्विन भाई 8:30 बजे रास्ते में थे, पर 8:30 के बाद यहाँ आए, तो कुछ परिणमन ज्ञान में आया कि नहीं उनके? अभी आज रविवार है, कल सोमवार है, वो जानेंगे कि नहीं? और सोमवार को कल सोमवार है जानेंगे कि आज सोमवार है जानेंगे? हर समय जो परिणमन हो रहा है वो उनके ज्ञान में आएगा कि नहीं? हर समय में वर्तमान भूतकाल हो गया और आगे का भविष्य काल है, ऐसा तो हर समय जानेंगे कि नहीं? तो उनका वर्तमान भी बदलते जाएगा। नो नो भाई,
देखिए देखिए, हाँ। एक समय में अनंत काल जानते हैं,
वही तो,
परंतु वर्तमान में कौन जीव कौन सी पर्याय में वो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? वर्तमान में यह पर्याय वर्तमान में चल रही है, इसे जानेंगे कि नहीं? तीनों काल की जान रहे, परंतु तीनों काल के समयों में वर्तमान में कौन सी पर्याय चल रही है उसको वर्तमान रूप से जान रहे, नहीं ख्याल में आए? उनके ज्ञान में आपके अश्विन भाई के अनादि के अनंत काल तक के सभी पर्याय झलकी है।
अभी मान लीजिए आप 50 साल पहले 2 बरस के थे, मान लीजिए, या 52 वर्ष के पहले एकदम छोटे थे, तो उस समय तुम छोटे हो ये वर्तमान में, ये उनके ज्ञान में था, और 50 साल के बाद इतने बड़े होने वाले हो ये भी जानते थे। अभी 50 साल के बाद क्या जानेंगे? वर्तमान में तुम कैसे हो, 6 महीने के हो क्या, 52 साल के हो? बस यही फर्क आ गया। तो हर समय में हर द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वर्तमान का, वो वर्तमान उनका बदलते बदलते जाएगा, और भूतकाल और भविष्यकाल जुदा जुदा रहेगा। और ये तो हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत पर्यायों का हाल है।
यानी केवली भगवान आपको अश्विन भाई रूप से भी जान रहे और सिद्ध रूप से भी जान रहे, परंतु वर्तमान में कौन सी अवस्था चल रही है? अश्विन भाई की चल रही है ना, तो वर्तमान भी उनके ख्याल में है ना कि खाली तीनों काल के जान लिए, परंतु अभी वर्तमान में कौन सी पर्याय चल रही है इसका भी ज्ञान होगा ना। अगले में अभी समझो 50 साल के आगे की बात करेंगे, आप देव पर्याय में हो, तभी वो क्या जानेंगे? अश्विन भाई को भूत रूप से, भूतकाल रूप से जाएंगे, और जो देव पर्याय उसको वर्तमान रूप से जानेंगे। हर समय जानेंगे तो तीनों काल की पर्याय, पर उन पर्यायों में से वर्तमान कौन सी चल रही है? हर समय का वर्तमान वर्तमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा?
ये तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। पिनांग भाई जो पूछ रहे तो बात तो उनके हर समय में जो कुछ गुण का कार्य हो रहा है, पर्याय कार्य हो रहे, तो उसका तो हर हमेशा निमित्त तो होगा। अभी हम ज्ञान गुण की बात ले रहे, तीनों को अपना पूरे विश्व को जानते हैं, तो पूरा विश्व उनको प्रमेयत्व गुण के कारण से निमित्त रूप से है। ऐसा निमित्त हर जगह लगाना, ज्ञान में लगाना, सुख में लगाना, इस तरह से कोई जिनेन्द्र के कथन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिले नहीं अपने को। हो सकता है कि हमारे ज्ञान में बात नहीं आवे, हमेशा ऐसा ही रखना कि जिनेन्द्र भगवान ने जो बात बताई है और मुझे बराबर नहीं लग रही है, तो मैं जिनेन्द्र से बड़ा नहीं हूं, मेरे ही ज्ञान में कुछ गड़बड़ी है और वो हमें क्लिक नहीं हो रहा है, तो हम अपने को सुधारने को देखें। मैं भी ऐसा पहले समझता था, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तेरा हिसाब कहाँ लगता है? गुरुदेव ऐसा कहते थे, पहले के जमाने की बात थी वो बिल, तो गुरुदेव ऐसा समझाते थे कि वो जो पहले कपड़े का धंधा करते थे, तो ऐसा वो एक हाथ से अभी कितना कपड़ा लाया, तो वो कहते कि भाई 50 गज लाया, 50 हाथ लाया, तो बालक 5-6 साल का होगा वो गिनेगा, बापा आप झूठ बोलते हैं, क्यों? ये तो 75 गज का है। हाँ, तो ये आप झूठ बोलते हो। बेटा व्यापार में 13 हाथ नहीं चलता है, ये मेरा जो बड़ा आदमी होगा उसका ही हाथ चलेगा। वैसा यह जो सिद्धांत है वो जिनेन्द्र भगवान के मतानुसार ही समझना,
ज्ञान के अनुसार चलेगा।
आई डोंट ब्लेम यू, ये आपकी बात नहीं है।
ऐसे प्रश्न आप पूछना, कोई बात नहीं उसमें, मगर उसमें समझना वो क्या अभी क्या समझाया है।
हाँ, आई गेट यू, आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल।
क्या हम इमेजिन कर करके भी कितना श्रुत ज्ञान के द्वारा इमेजिन कर सकते हैं?
ये बियॉन्ड इमेजिन है, बियॉन्ड राइट ट्रैक है। आपको अगर सही बात अभी कैसे मालूम हो गई, तो यू एक्सेप्टेड ना, जब बात मालूम हो गई तो आप तो समझ गए ना। हम उस तरह से विचार नहीं करते हैं, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। पहले देखो, हमेशा ज्ञान के बारे में तो केवली भगवान को ही ऊर्ध्व रखना ख्याल में, और फिर अपना जजमेंट लगाना, और नहीं कहीं बात बैठती है तो समझ लेना कि अपने ही ज्ञान में कहीं खटक रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। इतना मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको कोई आप बहुत ये कर रहे ऐसी बात नहीं है, और किसी के मन में भी प्रश्न आए तो पूछना, क्योंकि हमें तो यहाँ हमारा जो कुछ जिसको हम कहते हैं कि बराबर ना समझ ही है, उसको ही सुधारना है, और क्या है? हो सकता है कि कल आप हमको सुधार सकेंगे, उसमें क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चल,
केवल ज्ञान का स्वरूप तो शुद्ध ज्ञान में ही निश्चित करना है, नहीं समझे? कैन नॉट इमेजिन ऐसी बात नहीं है, वो शास्त्र के द्वारा उसके सभी एंगल से उसको जानना है। केवल ज्ञानी को अगर नहीं जाने, यानी केवल ज्ञान का स्वरूप निश्चित नहीं करेंगे, तो सर्वज्ञ का स्वरूप आपको निश्चित नहीं भाषित होगा। देव का स्वरूप जब तक निश्चित नहीं भाषित होता है, तो अपना सर्वज्ञ स्वरूप भी नहीं भाषित होगा, और अपना सर्वज्ञ स्वरूप भाषित नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। यानी जिन जिन जीवों ने अभी तक सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है और जो मोक्ष पधारे हैं, उन्होंने शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान का स्वरूप निश्चित किया है, ख्याल है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं समझा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल जान सकते। हाँ बिल्कुल, ये मिथ्यात्व तो श्रद्धा की अपेक्षा उसको मिथ्यात्व कह दिया, वो ज्ञान तो ज्ञान है और उसमें ये सारा ही निर्णय हो सकता है।
अभी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, हम फिर विषय पर आते हैं। यहाँ जो द्रव्य की परिभाषा बताई है, जो पर्याय को प्राप्त होता है, हुआ है और होगा, तो ये जो परिभाषा जो दिए वो कौन से द्रव्य की दिए, क्योंकि हम जीव की बात देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए हाँ सभी द्रव्यों की, यानी द्रव्य एस सच की परिभाषा है, ये जीव द्रव्य की नहीं है, इतना समझकर हम अभी आगे बढ़ते हैं।
हाँ। देखो ये सिद्धांत प्रवेशिका यहाँ से शुरू हो जाती है। अभी प्रवचन सार में भी जैसे द्रव्य कितने और उसमें क्या वो कितने प्रदेश है वही बात यहाँ भी आने वाली है। देखो अभी पहले द्रव्य हमने क्या है देखा, द्रव्य में गुण तो अनंत है और वे तो कायम ही रहने वाले हैं, तो अकेले गुणों का समूह हाँ बस द्रव्य वैसा के वैसा वैसा नहीं है, इसलिए पर्यायों को लिया यहाँ। गुणों का समुदाय है ठीक है, परंतु वे सभी अनंत जो गुण है उनकी सभी पर्याय मिलकर हम एक समय में एक पर्याय कहेंगे मान लेते हैं। तो द्रव्य अपने अपने पर्यायों को प्राप्त होता आया है, अभी तक वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में भी हमेशा वो अनंत काल तक प्राप्त होता रहेगा, उसको द्रव्य कहते हैं। मूल में मूल द्रव्य क्या है उसकी बात की। अब ये जो द्रव्य है तो वो द्रव्य कितने प्रकार के हैं इस विश्व में, तो वह द्रव्य दो प्रकार का है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। देखो कितनी बेसिक बात है, अभी तो ये मूल मूल बातें चल रही है। उनमें से जीव द्रव्य का लक्षण कहते हैं, दो प्रकार के द्रव्य बताए ना, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। एक यानी द्रव्यों में कोई जीव द्रव्य और कोई अजीव द्रव्य है, अभी उसमें भेद और करेंगे वो बाद में समझाएंगे। वह इस प्रकार है, जीव किस प्रकार है उसकी बात चलेगी अभी, जो पांच प्रकार के वर्ण से रहित है। पांच प्रकार के वर्ण मालूम है? हाँ बोलो, पांच प्रकार के वर्ण, हाँ काला नीला पीला लाल सफेद, ये वर्ण गुण के पर्याय। तो पांच प्रकार के वर्ण यानी वर्ण की पांच जो पर्याय है, कहने में पांच उसके जितने कॉम्बिनेशन है वो सब समझ लेना। तो पांच प्रकार के वर्ण से रहित है, पांच प्रकार के रस से रहित है, पांच प्रकार के रस, हाँ कट्ठा मीठा कड़वा कशायला और चरपरा। दो प्रकार के गंध से रहित है, यानी सुगंध दुर्गंध, यानी कोई गंध जिसमें नहीं है, ना जिसमें वर्ण है ना जिसमें रस है और ना ही जिसमें गंध है, और कुछ रह गया स्पर्श। आठ प्रकार के स्पर्श से रहित है, यानी हल्का भारी रूखा चिकना कड़ारम ठंडा गरम, ये जो कोई आठ प्रकार है उससे रहित है, यानी स्पर्श से रहित है। स्पर्श की पर्याय बताइए आठ, यानी जिसमें गुण ही नहीं होगा तो पर्याय कहाँ से होगी। ऐसा नहीं कि गुण है उसमें मगर पर्याय रहेगी, ऐसा नहीं है। उसमें ना स्पर्श गुण है ना रस है ना वर्ण है ना गंध है। और कैसा है जीव, सूक्ष्म है। और कैसा है, अमूर्ति है। और कैसा है, अगुरु लघु है, ना हल्का है ना भारी है, क्योंकि हल्का भारी तो पुद्गल की पर्याय है, तो यह अगुरु लघु है। और कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है। और जिसका कोई संस्थान अर्थात आकार निर्दिष्ट नहीं है वह जीव है। क्या कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जो सूक्ष्म है, जो अमूर्तिक है, जो अगुरु लघु है, असंख्यात प्रदेशी है, वह कौन है अशोक भाई जी? हाँ हम बताएंगे बताएंगे, पहले ये तो सुनो। तो हमने ये जीव का लक्षण बताया, तो क्या ये सही लक्षण है? शास्त्र में बताया, धौला में है, सही है। हाँ आप क्या कहते हैं? देखो वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है बराबर, और क्या है, अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशी है, तो उसको जीव कहेंगे। तो कोई कोई झगड़ा करने को आएगा कि नहीं आगे? हाँ कोई कौन आएगा? हाँ बराबर, धर्म द्रव्य झगड़ा करेगा, मुझ में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, मैं भी अमूर्तिक हूँ, मैं भी असंख्यात प्रदेशी हूँ, कल सुना ना बेन आपने, और अगुरु लघु मुझ में भी है, मैं भी सूक्ष्म हूँ, मैं भी अमूर्तिक हूँ, अधर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी कहेगा मेरे भी ऐसी पोजीशन है। हाँ वो कुछ नहीं होता वो नहीं, मगर इतने स्पर्श अभी हमने जो लक्षण बताया ना, स्पर्श मैं क्या क्या लक्षण बता रही हूँ, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशी है और अगुरु लघु है, तो कौन है, तो सभी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और सभी जीव द्रव्य वो झगड़ा करने के, हम भी है हम भी है हम भी है, तो इतना कहने से नहीं चलेगा। तो और भी कुछ लक्षण बताएंगे आगे, अब आगे पढ़ते देखो। यह जीव का साधारण लक्षण है, साधारण लक्षण या सामान्य गुण किसको कहते हैं, जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, यानी अन्य द्रव्यों में भी हो, अकेला जीव में ही हो ऐसा नहीं है। अर्थात यह लक्षण जीव को छोड़कर दूसरे धर्मादि अमूर्त द्रव्यों में भी पाया जाता है। क्या है? अन्य में भी वो लक्षण हम उतना ही देख कर, अरे ये जीव है ऐसा नहीं कहेंगे। तो जीव के लिए उसको कोई असाधारण लक्षण भी देखना पड़ेगा।
अभी जो हमें जो लक्षण देखा है वो तीन दोषों में जो लक्षण के दोष है, तो उसमें से कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। आप क्या कहते हैं? अतिव्याप्ति। आप क्या कहते हैं मंदा? अतिव्याप्ति। आपको तो मालूम नहीं डॉक्टर साहब,
बराबर है। जीव के अलावा धर्म और अधर्म भी अतिव्याप्ति दोष, बराबर है।
अतिव्याप्ति दोष ही आएगा।
देखो यह लक्षण जीव को छोड़कर दूसरे धर्मादि अमूर्त द्रव्यों में भी पाया जाता है, इसलिए इसे जीव का साधारण लक्षण कहा है, सामान्य गुण है। तो हम कहेंगे अस्तित्व गुण है जीव में, है मगर सभी छह द्रव्यों में है, तो अस्तित्व है वो जीव है ऐसा उल्टा उसको सिद्ध नहीं कर सकते। ख्याल है? वैसे इतने ही गुण देखे हमने और ये जीव है ऐसा नहीं कह सकते। तो जीव के कोई असाधारण गुणों के द्वारा जीव को निश्चित करना पड़ेगा। तो अभी उसके जो असाधारण गुण है जो दूसरे द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे वो अभी कहने पड़ेंगे, क्योंकि उसके द्वारा हमको जीव कौन है उसको निश्चित करना है। तो कहते हैं परंतु ऊर्ध्व गति स्वभावत्व भोक्तृत्व और स्वपर प्रकाशकत्व यह जीव का असाधारण लक्षण है। ऊर्ध्व गति स्वभावत्व ने ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वो स्वभाव, हम तो आड़ा तीड़ा कैसे भी चलते हैं और यहाँ तो लिखा है ऊर्ध्वगमन स्वभाव। तो स्वभाव कब प्रकट होगा? जो पूर्ण स्वभाव रूप प्रकट होगी अवस्था, तो सिद्ध भगवान में। तो यहाँ अरिहंत अवस्था पार 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में शरीर छूट गया, सभी कर्म छूट गए और स्वभाव प्रकट हुआ, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जहाँ विराजमान थे वहीं से सीधी आकाश की सीधी श्रेणी में पंक्ति में ऊपर जाके विराजमान हुए, वात वलय के अंतिम वहां टॉप तक। क्यों? उनकी अपनी योग्यता से। निमित्त के द्वारा कथन किया जाता है, कार्य तो उनके अपने से हुआ। ख्याल है ना? वात वलय ने अंतिम जो पृथ्वी, आठवीं पृथ्वी, उसके ऊपर तीन लेयर से वात वलय यानी वहाँ तो वायु का एक, हाँ अन्य भी सूक्ष्म जीव होते हैं वहाँ, परंतु वो तो पृथ्वी के बाहर सभी ओर से लोकाकाश जो है जहाँ तक पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जैसे अभी हमारी ये पृथ्वी है और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हम कहते हैं, हाँ वही है। हाँ आपका प्रश्न है सिद्धत्व पाने, सिद्ध पर्याय प्रकट होने पर सिद्ध शिला पे जाके विराजमान होते हैं, तो हम तो आज तक ऐसे ही समझते थे कि सिद्ध शिला पर वो रहते हैं या सिद्ध शिला पर विराजमान है
ऐसा। तो ये सामान्य रूप से तो ऐसा ही कहेंगे, सिद्ध शिला पे जाके विराजमान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है वो बता रहे,
सिद्ध शिला तो अंतिम पृथ्वी में है, जैसे आठवीं पृथ्वी जिसको कहते हैं, लोकाकाश हमको मालूम है ऊपर जो एक राजू प्रमाण जो है, यहाँ पृथ्वी है, ये सर्वत्र सात राजू, ये दक्षिणोत्तर ऐसी चौड़ी है बराबर, उसके मधोमध यहाँ पर ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो एक राजू बाय एक राजू चौकोर, वहाँ तो वो त्रसनाली होगी, उसके बीचों बीच वो तो एक राजू बाय एक राजू है, मगर बीचों बीच जो 45 लाख योजन की है वो सिद्धशिला है। वो सिद्धशिला कैसी है? तो ऐसी चौड़ी तो 8 योजन है और 45 लाख योजन में पेपर थिन हो जाती है, तो सेंटर में ऐसी है जाड़ी, ऊपर फ्लैट है, ऐसे चांद जैसे दिखाते वैसा नहीं है, ये ऐसी सीधा सीला बताते हैं ना, ऐसी है नहीं, उल्टे छत्र के आकार की बताया उसको, ये इस तरह से, यानी ये पूरी ऐसी पृथ्वी है। वो पृथ्वी कितनी बड़ी है, एक राजू बाई सात राजू, क्योंकि लोकाकाश के एंड तक पहुंचे उसको पृथ्वी कहते हैं। और उस पृथ्वी के ही बीच में ये जो शिला जो है धवल वर्ण की, तो ये जो है वो 45 लाख योजन विस्तार वाली है। तो 45 लाख योजन अड़ी द्वीप में से मनुष्य सीधे ही ऊपर गमन करते हैं, और सिद्ध शिला के ऊपर अभी ये यहाँ वात वलय यहाँ पूर्ण होते, तीन वात वलय है यहाँ, तो वात वलय के वहाँ उनके माथा मस्तक जिसका आकार है, वहाँ तो कुछ हाथ पैर नहीं, आत्मा के ही प्रदेश है।
नीचे का वात वलय?
हाँ, नहीं नहीं, ऊपर का सबसे अंतिम वात वलय, हाँ, सबके सिर, सिर का ऊपर टॉप एक लेवल में। और कोई 500 धनुष वाले होंगे तो कोई 7 हाथ वाले होंगे महावीर जितने, हाँ, कोई खड़े है कोई बैठे है, तो वहाँ वे विराजमान है। तो हम उसको सामान्य रूप से कहेंगे सिद्ध शिला पर विराजमान है, उसके ऊपर बहुत ऊपर है वे।
यहाँ जो पृथ्वी का एक, जो पृथ्वी थी वहाँ तक तो पृथ्वी का एक ये था, अब ऊपर जो है वहाँ तो वात वलय है, ख्याल में है ना, और उस आखिरी वात वलय के ऊपर के टॉप में वो वहाँ है बस।
वहाँ पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव तो रहेंगे ही, हाँ, वात वलय ने बादर वायु का एक है, इसलिए वो वात वलय कहेंगे उसको। जैसे वो अंतिम पृथ्वी है वो बादर पृथ्वी का एक है, वैसे ऊपर भी, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र ही होते, बादर में से भी थ्रू एंड थ्रू चले जाते हैं
सूक्ष्म,
हाँ,
सीधे ही
जाते, मोड़ नहीं लेंगे, ऊर्ध्वगमन है ना।
देखो अभी
मोड़ का सवाल ही नहीं,
देखो मोड़ का सवाल ही नहीं है, उनको मोड़ लेने का सवाल ही नहीं है, अभी उनके स्वभाव रूप पन्नमन हो रहा है ना, ऊर्ध्वगमन लिखा ना यहाँ पर, ऊर्ध्व गति स्वभाव है उनका। और अभी हम ऐसा आड़ा टेढ़ा जो जाते हैं, मतलब ऐसा ऐसा, वो भी स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो जाएंगे, वह तो हमें, हमारे साथ कर्म है, और उस कर्म के निमित्त से हम बिल्कुल सीधे सीधे नहीं जाएंगे, कभी कभी सीधे भी जाएंगे, लेकिन वह स्वभाव परिणमन नहीं है, वह तो विभाव परिणमन है। लेकिन जब सिद्ध जीव होता है तब कोई किसी भी प्रकार का कर्म उसके पास रहता ही नहीं है, तो वह जो स्वभाव जो है उसका, उस रूप वो ऊर्ध्व गमन करने का उसका स्वभाव है, तो वह स्वभाव अन्य कोई द्रव्य में नहीं है, ये असाधारण स्वभाव है, ये बात अपनी चल रही है।
देखो अभी है। असाधारण गुण तीन बताया, एक तो ऊर्ध्व गमन स्वभाव, दूसरा है भोक्तृत्व यानी भोक्तापना, भोक्तृत्व, और तीसरा स्व पर प्रकाशकत्व। हाँ।
ये भोक्तृत्व यानी किसको भोक्ता है? आई नो, आई कैन रीड इट फ्रॉम योर फेस। तो वहाँ कोई लड्डू खाता हो या कटकी खमन खाता हो, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो स्वस्वरूप को ही भोगना है, स्व स्वभाव का ही अनुभव करना, उसका रसास्वादन करना, अनंत सुख का भोग करना, यह भोक्तृत्व है।
हमने भी भोक्ता माना है अपने को, दुनिया भर की जितनी चीजें हैं, जितने पैसे हैं, सबको हम भोगना चाहते हैं, ये तो जीव अपने ही पर्याय को भोगता है। और क्या है? स्व पर प्रकाशकत्व, स्व को और पर को जानना, प्रकाशकत्व, प्रकाश करना यानी क्या? जानना, जानने को प्रकाश करते कहते हैं। यह जीव का असाधारण लक्षण है, यानी वो स्वयं को भी जानता है और संपूर्ण पर पदार्थों को जानता है। कोई भी पदार्थ उसके ज्ञान में से रह जावे, अननोन रह जावे, ऐसी बात ही नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो स्व को जानते हुए संपूर्ण पर पदार्थों को जाने। अर्थात यह लक्षण जीव द्रव्य को छोड़कर दूसरे किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण कहा गया है। असाधारण के नहीं, उसके द्वारा पिन पॉइंट हम यह जीव है ऐसा निश्चित करेंगे तो उसको कहेंगे ये जीव के असाधारण लक्षण है, ख्याल है ना। अन्य जीव, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जीव द्रव्य में ये लक्षण पाए जाते हैं। अभी यहाँ इसलिए उत्तम चयन ने यहाँ एक गाथा प्रस्तुत की है, ये गाथा हम पढ़ेंगे, आपको याद आएगा शायद, अन्य कहीं कहीं इसको आपने सुनी है, पढ़ी है। देखो ऊपर एक नंबर लिखी है ना, अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सत्तम जानालिंग गहनम जीवमणि दिठ संठानम। यह गाथा कहाँ आई है? हाँ, पांचों परमागुण कहाँ कहाँ? प्रवचन सार में है, पंचास इकाय में है, नियम सार, हाँ, और समय सार, हाँ। इसको कौन सी अलिंग ग्रहण की गाथा कहते हैं? अलिंग ग्रहण की गाथा। और अभी तक हमने ऐसा सुना रहे ये धौला में भी है, तो हम ऐसा ही मानते थे, हाँ धौला में पहले आई होगी और फिर कुंदकुंदने, बराबर है ना? क्यों नहीं? धौला में अभी पढ़ रहे हम, हाँ, तो कुंदकुंदने पहले लिखी कि धौलाकार ने पहले लिखी? हाँ, आप कहते धौला बाद में लिखी, आप क्या कहते हैं? षटखंडागम में नहीं है ये? हाँ, ये वीरसेनाचार्य की टीका है, षटखंडागम तो मूल ग्रंथ है। और अभी हमने क्या लिखा, देखो गाथा के ऊपर क्या लिखा है, उत्तम च, यानी ऐसा कहा है, यानी उन्होंने वो तो रेफरेंस दिया है, तो रेफरेंस उन्होंने कुंदकुंद भगवान का दिया है। धवलाकार तो टीकाकार है, मूल ग्रंथ षटखंडागम वो तो ओरिजिनल है, पहली ग्रंथ रचना, और धवलाकार तो बाद में हुए, पुष्पदंत और भूतबली तो पहले हुए थे, उन्होंने षटखंडागम लिखा था, पर षटखंडागम पर ये वीरसेन आचार्य ने जो टीका है उसका नाम है धवला। तो धवलाकार में उत्तम चेने ऐसा कहा है, ऐसा लिखा ना, कहा भी है, कहा भी है करके उन्होंने प्रवचन सार की गाथाओं का रेफरेंस दिया है, यानी उन्होंने कोट किया है कुंदकुंद भगवान को।
कोटेशन दिया है नीचे,
कोटेशन है ना, नीचे नीचे भी लिखा है, देखो प्रवचन सार और पंचास टीका है, उन्होंने शायद वो पेज नंबर लिखे होंगे, पेज नंबर लिखते हुए कभी कभी। चलो जी देखें, तो इसका अर्थ अभी देखते हैं, ये जो अभी हमने गाथा पढ़ी ना, हाँ, समय साल में 49वीं गाथा। इसका अर्थ देखते हैं, जो रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, अव्यक्त अर्थात स्पर्श गुण की व्यक्ति से रहित है, क्या लगता है ना, यानी स्पर्श रस गंधवर ने चारों ही गुण लिए हैं, चेतना गुण युक्त है, पहले रहित रहित वाले बता दिए, और चेतना गुण से युक्त है, शब्द पर्याय से रहित है, शब्द को पर्याय कहा, जो अभी प्रवचन सार में विषय हो रहा है, स्पर्श रस गंधवर्ण ये तो गुण है, एक एक इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, तो कोई ऐसा समझे कि शब्द भी कर्ण इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है तो वो भी पुद्गल का गुण होगा, ऐसे कोई समझ न ले, इसलिए वहां लिखते हैं शब्द ये पर्याय है। पर्याय कैसी है? अनेक पुद्गलों का मिला हुआ वो स्कंद है, तो स्कंद ये पुद्गल की पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है, पुद्गल की पर्याय है, इसलिए कहते हैं शब्द पर्याय से रहित है, और जिसका लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता है ने क्या, हाँ, अब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, या जो इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं, ऐसा भी कहेंगे, वो लिंग के बहुत अलग अलग अर्थ किए अमृतचंद्राचार्य ने, अभी आत्मख्याति टीका में आएगा, अभी समय सार चल रहा है, वहां उस विषय बहुत विस्तार से समझाया, उसके ऊपर 20 बोल लिए अलग अलग, यानी स्पर्श में रस में सब में 6-6 बोल लगाए और बहुत विस्तार से समझाया, अभी चलेगा ये अपने विषय।
प्रवचन सार में 20 भेद बताया और समय सार में 6 भेद आया।
अच्छा, समय सार में 6 और प्रवचन सार में 20 भेद, हाँ। अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है
और जो प्रवचन सार में 6 भेद बताए, 6 प्रकार से उन्होंने विवेचन किया, वो रिपीट नहीं किया है प्रवचन सार में, प्रवचन सार में 20 अलग ही एंगल बताए, कैसी बुद्धि होनी चाहिए। देखो
लिंग शब्द के अलग अलग अर्थ बताए, लिंग ने इंद्रिय, लिंग ने चिन्ह, लिंग ने ऐसी अलग अलग बातें,
वो स्वामी जी के लेक्चर से उसके ऊपर, वो
एक पुस्तक है, लिंग ग्रहण नाम की छोटी पुस्तक है,
और वही आप खरीद लेना, हम उसी को आगे फॉलो
करेंगे। एक गाथा के ऊपर इतना सारा माल है उसमें। देखो क्या कहते हैं, जो रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, अव्यक्त अर्थात स्पर्श गुण की व्यक्ति से रहित है, चेतना गुण युक्त है, शब्द पर्याय से रहित है, जिसका लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता और जिसका संस्थान, संस्थान ने आकार अनिर्दिष्ट है, अर्थात सब संस्थानों से रहित जिसका स्वभाव है, उसे जीव द्रव्य जानो। ये जीव द्रव्य की यहाँ पहचान कराइए। जीव द्रव्य किसे कहना, अभी इसका विस्तार तो अभी हम समय सार, प्रवचन सार आदि में हम देखने ही जाने वाले हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ख्याल है ना। हमें लगता है ये कोई करना नियोग है, उसमें जो वो बातें, बाकी बातें भूल जाना, ऐसी बात नहीं है। मूल बात तो यही है।
यहाँ पर जो लिखा है कि जिसका संस्थान अनिर्दिष्ट है, यानी संस्थान यानी जो आकार होगा वह कोई विशिष्ट आकार का है ऐसी बात नहीं है, यानी जो आकार नहीं बता सके ऐसे आकार का है, लेकिन उसमें प्रदेशत्व नाम का गुण है, उस अपेक्षा से वो असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन अभी हमने देखा ना, सिद्धेश्वरा में कोई 500 धनुष वाला है, कोई 7 हाथ वाले हैं, कोई पद्मस्थ है, कोई खड़गासन खड़गासन में है, तो ये आत्मा का जो आकार होगा वह अनिर्दिष्ट यानी बताने जैसा कुछ नहीं, लेकिन आकार सहित है, आकार है नहीं ऐसा नहीं,
मूर्ति का आकार नहीं,
हाँ मूर्ति
का आकार जो है, मूर्ति का आकार नहीं
है, सब संस्थानों से रहित ऐसा आकार है। अब ये सब संस्थान जो है वो 6 प्रकार के संस्थान हम जो जानते हैं उससे रहित है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। अब आगे
देखो, ये जीव द्रव्य की पहचान कराई। अब अजीव द्रव्य 2 प्रकार का है, रूपी अजीव द्रव्य और अरूपी अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य में कितने द्रव्य है, 5 द्रव्य है ना, जाति अपेक्षा 5 द्रव्य है। तो उसमें फिर 2 डिवीजन किए, पहले में जीव और अजीव 2 भेद किए थे, सभी द्रव्यों के 2 भेद किए, जीव और अजीव, जीव का लक्षण बता दिया। अब अजीव द्रव्यों के फिर 2 भेद किए, मूर्तिक और अमूर्तिक, यानी रूपी और अरूपी। तो रूपी कौन है, पुद्गल, रूपी पुद्गल है ना, और उसको छोड़कर बाकी जो अन्य है वो अरूपी अजीव द्रव्य है। देखो अजीव द्रव्य 2 प्रकार का है, रूपी अजीव द्रव्य और अरूपी अजीव द्रव्य। उनमें नहीं, सीधा अजीव है क्या, सभी जीवों को हमने पहले ही अलग निकाल दिया अरूपी में।
देखो अभी हम अजीव द्रव्य के विश्लेषण कर रहे हैं, अजीव द्रव्य के डिविजन देख रहे हैं। हमने जीव द्रव्य को देख लिया, उसमें तो हमारे सिद्ध भगवान आ गए।
हाँ, अभी अजीव में हम डिविजन करें, फिर विभाजन, तो अजीव में रूपी और अरूपी फिर किया, तो रूपी पुद्गल, तो अरूपी अजीव कौन रह गए, धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ? ये तो बच्चों का चल रहे, हाँ? हम बच्चे ही है जब तक इसको पढ़ रहे, तो बच्चे हम। देखो अजीव द्रव्य 2 प्रकार का है, रूपी अजीव द्रव्य और अरूपी अजीव द्रव्य। उनमें जो रूपी अजीव द्रव्य है उसका लक्षण कहते हैं, रूपी अजीव द्रव्य यानी किसका लक्षण कहेंगे अभी, पुद्गल का। देखो रूप रस गंध और स्पर्श से युक्त पुद्गल रूपी अजीव द्रव्य है, जैसे शब्दादि, शब्द बोलिया, शब्दादि में क्या कहते हैं, रूप रस गंध और स्पर्श से युक्त पुद्गल, यानी शब्द भी रूप रस गंध वर्ण से युक्त है, ये ऐसा ख्याल आता है ना इसमें, हा? शब्द को भी गंध होगा, हा? वो भी मीठे 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 शब्द अच्छे लगते हैं ना, वो भी वो खट्टा मीठे की बात नहीं है, क्या ना, वो भले वो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न हो, अन्य इंद्रियों के द्वारा, मगर वो पुद्गल है तो उसमें ये गंध, ये गुण होने ही चाहिए, भले वो इंद्रियों के द्वारा हमारे ग्रहण नहीं हो, ख्याल है ना, क्योंकि कभी कभी उसका सूक्ष्म रूप से परिणमन चलता है। वह रूपी अजीव द्रव्य 6 प्रकार का है, पुद्गल 6 प्रकार का है, रूपी अजीव द्रव्य 6 प्रकार का है, कौन सा होता होगा, प्रवचन सार सुनने वालों को पता है, हाँ वो स्कंदों के जो हमने प्रकार देखे, स्कंदों के या पुद्गलों के, कौन से, हाँ स्थूल स्थूल, पहला स्थूल स्थूल, दूसरा स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। अभी इसको एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसका बताएंगे, यहाँ गाथा आएगी। यही गाथा हमने प्रवचन सार में भी कोट की हुई देखी थी। क्या ले? देखो यहाँ क्या कहते हैं, वह रूपी अजीव द्रव्य छह प्रकार का है, पृथ्वी, जल, छाया, नेत्र को छोड़कर शेष चार इंद्रियों के विषय, कर्मस्कंध और परमाणु। ये छह बातें बताइए। पृथ्वी, ये रिप्रेजेंटेटिव पृथ्वी लिखा, तो उसमें पृथ्वी में बहुत बड़े रॉक्स यानी शिलाएं भी होगी, पर्वत भी होगा, ये चौक भी वो उसमें आएगा, क्योंकि इसके दो टुकड़े होते हैं, है? और फिर एक साथ लाओ तो ये जुड़ते नहीं है पूर्ववत। तो ये भी पृथ्वी तो उसका रिप्रेजेंटेटिव एक बता दिया, एक उदाहरण के तौर पर बता दिया। जो जो स्कंद ऐसे है, अभी आईलैश ले लो फॉर एग्जाम्पल, उसके दो टुकड़े होंगे और फिर वो जुड़ेंगे नहीं, तो ये सभी पृथ्वी टाइप के यानी स्थूल स्थूल स्कंद हो गए।
देखो यहाँ स्थूल स्थूल स्कंद का पहले डेफिनेशन हम देखते हैं, यानी उसके हम परिभाषा ऐसा कर सकते हैं कि जो स्कंद अगर उसका विभाजन हो जाए तो वह स्वयं फिर से पूर्ववत नहीं हो सकते हैं, ऐसे को स्कंद स्कंद अपना स्थूल स्थूल कहा स्थूल। गया है। तो ये हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है यानी बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा अपने आप एक जैसा नहीं होते, तो इसको कहा गया है स्थूल स्थूल। अभी उसमें हम सूक्ष्म मतलब छोटे में छोटे हमने देखा था कि ये जो आईलैश होती है या रोटी होती है उसके भी दो टुकड़े कर दो वो दोबारा एक जैसा नहीं होगा, लेकिन वो लोई जो होती है उसके दो विभाग कर दो फिर उसको दबा के एक साथ कर दो तो पहले जैसा हो जाता है, रोटी नहीं होगी। ख्याल में इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक पृथ्वी नाम दिया है, इसका ही अर्थ कि ऐसे स्कंद कि जिसका दो विभाजन मतलब दो रूप से उसके टुकड़े हो जाए तो वह स्वयं अपने से ही पूर्ववत नहीं होते, बस इतना लेना। अब आगे क्या आप बताएं?
ऐसा भी उसमें हम उसको उठाकर अन्यत्र ले जा सकते हैं, ये जो स्थूल स्थूल वाले स्कंद है ना वो उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जा सकते। अब दूसरा जो जल लिखा है वहाँ उसको कहेंगे हम सूक्ष्म स्थूल, एक टाइम लिखना है स्थूल, पहले हमने दो बार बोला स्थूल स्थूल, अब उसकी अपेक्षा से ये स्थूल है तो जल है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ, तो जितने प्रवाही पदार्थ हैं वो इस टाइप में आ सकते हैं। कैसे, उसकी परिभाषा क्या है कि जो पुद्गल स्कंद जिसका वो विभाजन करने के बाद फिर दोबारा इकट्ठा लावे तो पूर्ववत हो जाते हैं। हमने पानी में से दो, एक लोटे में से दो गिलास पानी भरा और फिर नहीं चाहिए था फिर लोटे में डाल दिया तो पूर्ववत वो हो गया, एकमेक हो गया। वैसे घी है, तेल है, दूध है, ये सभी जो प्रवाही पदार्थ है वो स्थूल स्कंद है, इसको भी हम उठा के ले जा सकते हैं अन्यत्र। तीसरा जो है यहाँ तो लिखा है छाया, तो छाया यानी जो आँख से तो दिखती है, चक्षु इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, जो उठाकर हम अन्यत्र नहीं ले जा सकते। ये पहले दो में उठा के ले जा सकते हैं क्यों लिखा, तीसरे में ये हमको लगाना था कि बाहर धूप पड़ी है तो हम कहेंगे बच्चे को जा थोड़ी धूप ले आ अंदर, मुट्ठी भर धूप ले आ, तो नहीं ला सकते या छाया नहीं ला सकते। तो ये तीसरा टाइप का स्थूल सूक्ष्म नाम का स्कंद है, वो भी पुद्गल स्कंद है। चौथे स्थान पर किसको लेना, शेष चार इंद्रियों के विषय यानी नेत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रियों को छोड़कर, छाया तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखती थी, छाया है धूप है, परंतु अभी ये जो है अन्य चार इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, ऐसे चक्षु को छोड़कर अन्य चार इंद्रिय यानी जो आँख से तो नहीं दिखे परंतु अन्य इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकते हैं, ऐसे कौन होंगे बोलो? हवा। कौन से इंद्रियों के द्वारा जानी जाती है? स्पर्शन इंद्रिय की। दूसरा और कुछ? हाँ, आवाज, ध्वनि है। कर्ण इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, और गंध, सुगंध और दुर्गंध घ्राण इंद्रिय के द्वारा जाने जाते हैं, और रसन इंद्रिय के द्वारा जिसको हम चखे जान सकते हैं, ख्याल है ना। तो ये इसको कहते हैं, कौन सा वाला हो गया अभी, सूक्ष्म स्थूल, चौथे नंबर का स्कंद, पांचवे नंबर पर है कर्म स्कंद। कर्म स्कंद है ना, जिसको हम आठ कर्म कहते हैं या कारमान शरीर कहेंगे, कि वो इतने अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद है, फिर भी ना आंखों से दिखता है ना अन्य इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। कर्म स्कंद इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। हम तो रोज देखते हैं अंतराय कर्म आड़ा आता है, कौन से कलर का होता है
देखो हम तो यहाँ देख रहे हैं, ये जो कर्म है, ये कर्म तो ऐसा सूक्ष्म स्कंद है कि जो पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जाता है। हमारा तो क्षोभ ज्ञान है ना, तो इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान में नहीं आता है। मेरा ये प्रश्न है, तो केवली इंद्रियों से जानते होंगे कि नहीं? हाँ बोलो भाई, केवली, अरे
हम तुम तो इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। आपका प्रश्न है केवल ज्ञानी तो इंद्रियों के द्वारा जानेंगे ना, क्योंकि उनका ज्ञान तो कितना है, नहीं?
हाँ, कौन से ज्ञान से? मन परिय ज्ञान से। अच्छा, आप क्या कहते हैं? केवल ज्ञान से। तो वो इंद्रियों से जानते हैं कि नहीं? हाँ? देखो भाई साहब, अरे उनके तो क्षायिक ज्ञान है। सुनो सुनो,
तो मन परिय ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चौथा, वो क्षोभसम ज्ञान है कि क्षायिक ज्ञान है? क्षायिक भी है?
नहीं,
तो
नहीं,
केवल ज्ञानी को मन परिय ज्ञान भी है और क्षायिक केवल ज्ञान भी है, क्या अकेला है कि केवल ज्ञान है?
देखो बहन, कभी भी ज्ञान के जो पांच पर्याय है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कोई भी द्रव्य के कोई भी गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। यानी मुझे मिथ्या दर्शन भी है और सम्यक दर्शन भी है, ऐसा नहीं होगा। मुझे मिथ्या ज्ञान है और सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं होगा। एक ही समय में मति ज्ञान होगा या तो श्रुत ज्ञान होगा। और ये क्षायिक ज्ञान जो है वह तो केवल ज्ञान है, और वह भी है केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान भी है और क्षयक्षम ज्ञान भी है। ऐसे दो पर्याय एक साथ कैसे होगी? बात ख्याल में आती?
तो अलग 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 तो हो सकेंगी ना, कभी केवल ज्ञान होगा कभी मनोपरिय ज्ञान होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा
नहीं,
देखो बारह गुण स्थान तक होते हैं, ख्याल है ना, और वे भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों के अधीन नहीं है।
एक मिनट, सकल प्रत्यक्ष नहीं है वो, एक
विकल प्रत्यक्ष है,
तो उसमें मन
संपूर्ण आत्म प्रदेशों से नहीं जाने जाते, विशिष्ट आत्म प्रदेशों के नहीं, उसमें इंद्रियां कुछ काम नहीं करती है।
मन मन उसमें है ना,
दूसरों के मन का जानते हैं, मगर वो आत्म प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट जानते हैं बिल्कुल नहीं, नहीं तो उसको प्रत्यक्ष कहते ही नहीं। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि बीच में इंद्रियों का माध्यम है, वैसे इनके कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आत्म प्रदेशों के द्वारा ही जानते हैं, इसीलिए उनको विकल प्रत्यक्ष कहा है। संपूर्ण सभी असंख्यात प्रदेशों से नहीं, अभी वो कहाँ के है क्या है वो सभी डिटेल है, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। हाँ, देव और नारकियों के वो भी अवधि है, तो विकल प्रत्यक्ष है ना, वो भी वो सर्वांग से जानते। विकल प्रत्यक्ष कहा ना, केवल ज्ञान इतना संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, पार्शल प्रत्यक्ष। देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये कर्म स्कंद तक आए थे, और छठे स्थान पर जो सूक्ष्म है उसमें परमाणु को लिया, सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म स्कंद को सूक्ष्म लिया था, बराबर है, और सूक्ष्म सूक्ष्म वाला छठा भेद जो है उसने परमाणु लिया, एक परमाणु। अब कहां भी है, मैं गाथा बताते हैं जो ऊपर लिखी है, कुडवी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु छव्य मेयम भणियम पोगल दौवम जिनवरेहिम। जिनवरों ने इसको भणियम यानी बताया है, ख्याल है ना, उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर ये बातें बताई, छह प्रकार के जो पुद्गल बताए हैं। ये जो गाथा है वो गोमटसार जीव कांड में से ली उन्होंने, हाँ, जिनवरे हिम, यानी जिनवरों के द्वारा वो बताई गई है। देखो क्या कहते हैं, इसका अर्थ नीचे लिखा है तीसरी लाइन में, आपको कुछ बताने। ये जो गोमटसार जीव कांड है नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी हुई, जो हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ी थी ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो भाषा टीका है। टोडरमल जी ने गोमटसार जीव कांड के ऊपर हिंदी में उनकी ढूंढारी भाषा में टीका लिखी थी, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और वहाँ मूल ग्रंथ हम जो गाथाएं पढ़ते थे वो तो जीवकांड गोमटसार की गाथाएं जो नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी है उसी को हमने पढ़ा था। उसमें से ये 601 नंबर की गाथा है, पुढ़वी जलम च छाया चौरिंदीय विषय कम्म पाओगा कम्मा तीदा एवं छब्भेया पोगला होंती। ये तो पंचासी का वाली, और अभी जो हमने पढ़ी वो गोमरसार जीवकांड वाली। कल अभी ये यही गाथा जयसेनाचार्य की जो टीका है प्रवचन सार के ऊपर उसमें भी यही गाथा हमने पढ़ी थी। आप ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, जिनेंद्र देव ने पृथ्वी जल छाया नेत्र इंद्रिय के अतिरिक्त शेष चार इंद्रियों के विषय, ये चौथे स्थान पर हा? पहले स्थान पर पृथ्वी, दूसरे में जल, तीसरे में छाया, चौथे में नेत्र इंद्रियों को छोड़कर अन्य इंद्रियों के विषय, पांचवे में कर्म और छठे स्थान पर परमाणु, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य छह प्रकार का कहा है। उसमें से तो पहले पांच तो स्कंद है और अंतिम परमाणु वो तो परमाणु है, इसी का विशेषार्थ बताते हैं। ऊपर जो पुद्गल के छह भेद बतलाए हैं वे उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण यानी रिप्रेजेंटेटिव है, पृथ्वी कह देने से वो स्थूल स्थूल में जितने का सारे स्कंद आएंगे वो सभी वो पृथ्वी शब्द से सूचित कर देते हैं, यानी पृथ्वी ने अकेले पृथ्वी को नहीं समझना। जल कहेंगे तो अकेला जल नहीं लेना, जितने भी द्रव पदार्थ है वो सब इसमें आ जाएंगे। इसलिए उपलक्षण से उस जाति के पुद्गलों का उस भेद में ग्रहण हो जाता है। ये भेद का नाम उन्होंने पृथ्वी भेद लिख दिया बस, परंतु उसमें ये स्थूल स्थूल वाले सभी स्कंद आ गए। ग्रंथांतरों में यानी अन्य ग्रंथों में, ग्रंथांतर यानी अन्य अन्य ग्रंथों में जो पुद्गल के स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म ये छह भेद गिनाए हैं। अभी हमने इसको देखा था ना कौन कौन से होते हैं, हमने यही भेद गिनाए थे अभी, और उनका दृष्टांतों द्वारा स्पष्टीकरण करने के लिए उपर्युक्त यानी अभी ऊपर बताए हुए ये जो अभी हमने छह नाम बताए हैं, तो अभी जो स्थूल 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 वगैरह जो भेद है छह भेद है उन्हीं को ऊपर नाम लिखकर उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। उपर्युक्त पृथ्वी आदि छह प्रकार बतलाए हैं, इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये पृथ्वी आदि नाम उपलक्षण रूप से लिए गए हैं। उपलक्षण यानी फॉर बताने के लिए, हाँ लक्षण के लक्षण कहो या फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव करके एक पृथ्वी लिख दिया उसमें सभी प्रकार के, हाँ वही एग्जाम्पल उदाहरण की बात। अब ये रूपी अजीव द्रव्य की बात की उन्होंने, रूपी अजीव द्रव्य के ये छह भेद भी बताए। अब अरूपी अजीव द्रव्य बताएंगे, तो अरूपी अजीव द्रव्य चार प्रकार का है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। उनमें से धर्म द्रव्य का लक्षण कहते हैं, ये कैसी बात है, अभी साइड बाय साइड प्रवचन सार में यही विषय चल रहा है, अभी धवला में भी यही विषय आया और हमें लगता है वो क्या सिद्धांत प्रवेशिका क्या पढ़ना, अरे वो सिद्धांत प्रवेशिका नहीं है, वो संपूर्ण जिनागम का निचोड़ है उसमें, ख्याल है। तो धर्म द्रव्य का लक्षण कहते हैं, अभी इसमें भी ये देखो जो पांच प्रकार के वर्ण से रहित है, यानी इसमें भी कहेंगे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, अरूपी द्रव्य है ना, तो जो पांच प्रकार के वर्ण से रहित है, पांच प्रकार के रस से रहित है, दो प्रकार के गंध से रहित है, आठ प्रकार के स्पर्श से रहित है, जीव और पुद्गलों के गमन और आगमन में साधारण कारण है, यानी जीव और पुद्गलों को गति में निमित्त है, असंख्यात प्रदेशी है और लोकाकाश के बराबर है, वह धर्मद्रव्य है। उसका साइज शेप कैसा है तो लोकाकाश के बराबर है एग्जैक्ट, तो उसको धर्मद्रव्य कहते हैं। यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जो अरूपी है ना, और कैसा है, जीव और पुद्गलों को गमनागमन में निमित्त है, अजीव है, ये तो पहले बता दिया, अजीव द्रव्यों के हम भेद देख रहे हैं, ख्याल है ना। इसी प्रकार ये धर्मद्रव्य की बात हो गई, तो उसमें असाधारण उसका गुण कौन सा बतलाया, हाँ, जीव और पुद्गलों को गमन में निमित्त। इसी प्रकार अधर्मद्रव्य भी है, इसी प्रकार यानी जो वर्ण से रहित है, गंध से रहित है, स्पर्श से रहित है आदि, असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश के बराबर है, परंतु इसमें डिस्परेंस कहाँ होगा धर्म और अधर्म में, इतनी विशेषता है कि यह जीव और पुद्गलों की स्थिति में साधारण कारण है। साधारण कारण यानी कॉमन, सब जीवों को और सब पुद्गलों को एक साथ यानी युगपत ये निमित्त होता है, सबको सामान्य रूप से स्थिति में निमित्त है, एक ही है ना, और सबका गमन या स्थिति अपने अपने पर्याय के यानी अपने अपने योग्यता के कारण जीव और पुद्गल गमन रूप और स्थिति रूप होते रहते हैं। तो गमन रूप होते हैं तब धर्म द्रव्य निमित्त है, स्थिति रूप होते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, वो एक ही अखंड है, इसलिए सब जीव पुद्गलों को एक साथ निमित्त बनता है। जितने अनंतानंत जीव या अनंतानंत पुद्गल स्थिति रूप परिणमते हैं उनको अधर्म द्रव्य एक साथ उनको स्थिति में निमित्त है, और धर्म द्रव्य सबको एक साथ गति में निमित्त है। परंतु गति या स्थिति जीव या पुद्गल अपने स्वयं की योग्यता से करते हैं, अपने स्वयं की उपादान शक्ति से करते हैं, निमित्त कुछ नहीं करता है, वो हाजिर है वहां बस। इसी प्रकार आकाश द्रव्य भी है पर इतनी विशेषता है, इसी प्रकार है ने वर्ण से रहित है, गंध से रहित है, रस से रहित है, स्पर्श से रहित है, विशेष क्या बात है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। धर्म और अधर्म कितने प्रदेशी कहा था, असंख्यात प्रदेशी, और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, सर्वगत है, सर्वगत है ना, सभी में व्याप्त है, सभी द्रव्यों में व्याप्त है, सर्वव्यापक कहते ना, सर्वव्यापक कहो या सर्वगत कहो, उसी के कारण उसको का ये सबको अवगाहना देता है, हाँ, यानी थ्रू एंड थ्रू। अभी हम देखते ये सॉलिड है, इसमें पेंसिल एंटर नहीं करते, तो आकाश इसमें अंदर गत है कि नहीं है, तो सर्वगत है, थ्रू एंड थ्रू सब जगह है, ऐसा नहीं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स छोड़ा और उसके बाजू में आकाश है, ऐसा नहीं है। मेरु पर्वत के अंदर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा और यहाँ अपने पेट में, अपना पेट हाँ, और जीव द्रव्य में जीव द्रव्य में थ्रू एंड थ्रू उसके अंदर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, सुपर इम्पोज है सभी द्रव्य एक दूसरे में, इसको परस्पर अवगाहना कहते हैं। परंतु आकाश तो सबसे बड़ा है और वो सब में थ्रू एंड थ्रू सर्वगत पहुंचा है, व्याप्त है, अन्य मत कहते ना वो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं व्याप्त है, ये आकाश द्रव्य व्यापक है सर्व आकाश द्रव्य आनंद प्रदेशी सर्वगत और अवगाहन लक्षण वाला है, यानी सबको वो अवगाहना देता है, सभी द्रव्यों को अवगाहना लक्षण वाला है, उसमें निमित्त है। इसी प्रकार अब काल द्रव्य की भी बात बताते हैं, ये बहुत महत्व की बात है और इस पर अभी हमने चर्चा भी की थी शाम के क्लास में, और आपको द्रव्य संग्रह का वो निकाल कर दिखाया भी था, क्या लिखते हैं यहाँ, इसी प्रकार काल द्रव्य भी है पर इतनी विशेषता है कि काल द्रव्य अपने और दूसरे द्रव्यों के, क्या लिखा है पिनांग भाई, अपने भी और दूसरे भी, अपने और दूसरे द्रव्यों के परिणमन में साधारण कारण है, साधारण कारण यानी परिणमन में निमित्त है, किसके किसके, अन्य द्रव्यों के नहीं, अपने भी और पर के। यही प्रश्न था ना कि काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त होगा। काल द्रव्य तो अन्य पांच द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, परंतु काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त है, तो वो स्वयं अपने परिणमन में भी निमित्त है। देखो मूल इसमें पढ़ेंगे हम, तीन पृष्ठ पर अंतिम वो प्राकृत में पढ़ेंगे। एवं चेव काल दव्वंपी, देखो तीन नंबर के पृष्ठ पर प्राकृत जो टीका है, मूल टीका वीरसेन आचार्यों के शब्दों में हम पढ़ेंगे। अंतिम लाइन एवं शब्द ऊपर की लाइन में, सेकंड लाइन में, नीचे की लाइन देखो, एवं चेव काल दव्वंपी, काल द्रव्य भी इसी प्रकार है। इसी प्रकार मैंने उसमें भी रस नहीं है, वर्ण नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है। नवरी सपर परिणाम हेउ अपदेशियम लोग पदेश परिमाणम, परंतु वो क्या है, काल द्रव्य भी ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, पर परंतु क्या विशेषता है उसमें, सपर, सपर यानी स्वपर, स्व के और पर के, परिणाम हेउ, परिणमन में हेतु यानी निमित्त है। स्व के भी परिणमन में निमित्त है और पर के परिणमन में भी निमित्त है। और कैसा है, अपदेशियम, अप्रदेशी है यानी एक प्रदेशी, यानी बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है। और कैसा है, लोग पदेश परिमाणम, उसकी संख्या कितनी है कालद्रव्यों की। धर्म अधर्म आकाश में तो कोई संख्या का सवाल ही नहीं था, अभी कालद्रव्य एक नहीं है, अनेक है, तो वो कितने हैं, तो लोग पदेश परिमाणम, जितने लोकाकाश में प्रदेश है उतनी संख्या में काल द्रव्य है। ख्याल है, देखो इसका भाषांतर फिर पढ़ते हैं कि ये जो काल द्रव्य, इसी प्रकार काल द्रव्य भी है, इसी प्रकार है ने, पेज नंबर चार पर आ गए हम, इसी प्रकार है ने, क्या है, वो अरूपी है, वो अजीव द्रव्य है, अरूपी में वो स्पर्श रस से गंध से वर्ण से रहित है, अजीव द्रव्य तो है ही, वो हमने पहले एस्टेब्लिश किया था। और क्या है उसमें विशेषता, क्या है कि काल द्रव्य अपने और दूसरे द्रव्यों के परिणमन में साधारण कारण है यानी निमित्त कारण है, चले अप्रदेशी अर्थात एक प्रदेशी है, उसका साइज कितना है, एक एक प्रदेशी, प्रत्येक कालाणु उसको कहा, अणु क्यों कहा, काला काल को अणु क्यों कहा, एक प्रदेश है ना, परमाणु जितना है इसलिए उसको कालाणु कहा।
देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि जो आकाश का प्रदेश उसका साइज कितना है, ऐसा जगह हमारे मन में प्रश्न उठता है, तो वहां कहते एक परमाणु जो है परम अणु, कि जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, ऐसा जो पुद्गल परमाणु है वह जितनी जगह व्यापेगा उसको एक प्रदेश कहेंगे। और ऐसा ये कालाणु जो है वह लोकाकाश के प्रत्येक आकाश के लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। तो लोकाकाश में कितने प्रदेश है, तो कहते असंख्यात है, तो काल द्रव्य भी असंख्यात है। ये हम संख्यात प्ररूपना देख रहे हैं ना, संख्या प्ररूपना, तो ये पहले सब द्रव्यों की यहाँ प्ररूपना बताएंगे, बाद में जीव पर आएंगे। तो यहाँ पहले तो बताया कि भाई कौन कौन कितना कितना है, जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य एक एक है। अब काल द्रव्य कितने हैं, तो कहते हैं असंख्यात है। वो असंख्यात कितने हैं, कि लोकाकाश में जितने आकाश के प्रदेश है उतने काल द्रव्य है। ख्याल में, अब आगे
यानी लोकाकाश ऐसे सभी ये घन स्वरूप है ना, तो उसमें एक 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 पॉइंट पर एक 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 काल द्रव्य है। जैसे हमने उसकी राशि बनाई रत्नों से, एक एक प्रदेश पर एक एक रत्न खचित करो तो कैसे हो गए, तो जितने लोकाकाश में प्रदेश है उतने काल द्रव्य है, इसीलिए उसको कहते हैं लोक प्रमित, लोकाकाश प्रमाण असंख्येय यानी असंख्यात, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही कालाणु है। इस प्रकार ये छह द्रव्य है, छह द्रव्य में मूल भेद दो किए, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव का द्रव्य का लक्षण बताए, स्पर्श रसक अंदर से जो रहित है, असंख्यात प्रदेशी आदि आदि कहकर फिर बताए उसका साधारण गुण तो बताया आपने, असाधारण कौन सा है? जीव द्रव्य का असंख्यात ऊर्ध्वगमन स्वभाव, भोक्तृत्व और स्वपर प्रकाशक है ना, स्वपर प्रकाशक। तो इस तरह से जीव का लक्षण बताया। अब अजीव द्रव्य है, वो पांच द्रव्य अजीव है, उसमें फिर दो भेद किए, एक रूपी अजीव और एक अरूपी अजीव। तो रूपी अजीव में वो स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह सब बताए, उसके गुण बताए पुद्गल के, और उसमें छह प्रकार के स्कंद भी बताए। जो अरूपी अजीव द्रव्य है उसके चार भेद, चार प्रकार बताए, धर्म अधर्म आकाश और काल। उसमें सभी जो है वो स्पर्श रस गंध से रहित है, अचेतन है ही है, क्योंकि अजीव के ही भेद हम देख रहे थे। तो धर्म द्रव्य में हमने क्या देखा, हाँ, जीव और पुद्गल के गमन आगमन में निमित्त है। अधर्म द्रव्य है वो स्थिति में निमित्त है। आकाश द्रव्य है वो अवगाहना में निमित्त है। और काल द्रव्य है वो स्वपरह के परिणमन में निमित्त है। इतनी अवगाहना ये छह द्रव्यों का सामान्य स्वरूप है। हाँ, आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, तो सबको एक साथ अवगाहना देने की सामर्थ्य किसकी है? अवगाहना तो हम देंगे, मैं अवगाहना दूं तो कितने प्रदेशों को दे सकते, आप वहां बैठे हो, हाँ? या ये चश्मा है तो चश्मे को मैंने थोड़ी अवगाहना दी है, वो तो मेरे से भिन्न प्रदेश में स्थित है, इसको मैंने कहाँ अवगाहना दी है, ख्याल है ना। अब यहाँ हम बैठे हैं और हमारा मंदिर वहां दादर में है, वो मंदिर को मैंने कहाँ अवगाहना दी है, वो अपने से भिन्न प्रदेशों में स्थित है। आकाश के गुण अनंत है, उसके विशेष गुण भी अनंत है, परंतु अभी हमारा प्रयोजन क्या है, हमको उसको पहचानना है। या हमको सभी के सभी अनंत गुण गिनाने नहीं है, ख्याल है ना, हाँ। परंतु हमारा प्रयोजन क्या है ये अवगाहना देता है वो आकाश द्रव्य। हम इसका इतना कहकर, अनंत प्रदेश इतना कहकर हम उसको छोड़ेंगे, हमको तो लक्ष्य अपना करना है, ख्याल है ना। उसका विशेष गुण और उसका स्वरूप, इन कितने द्रव्य कितने हैं, तो आकाश को जानो ही मत ऐसा कहेंगे, जानो मत कैसे, हमें आत्मा को जानना है। आत्मा क्या, आत्मा कैसा है, स्वपर प्रकाशक है, तो स्व यानी आत्मा को जानता है, तो पर यानी आकाश को जानेगा कि नहीं जानेगा? तो जो आकाश को जानता नहीं उसको हम आत्मा कैसे कहेंगे? तो जो छह द्रव्यों को जानता है उसको ही हम आत्मा कहेंगे? तो इसलिए अन्य द्रव्यों की भी बात कहकर इतने में ही छोड़ दिए, उसके डिटेल में नहीं गए, ख्याल है ना। तो पुद्गलों की डिटेल क्यों बताई, क्योंकि पुद्गल को ही हम आज तक जीव समझ रहे, इसलिए हाँ, जिसमें भेसल होता है ना अपना भेसल, तो उसकी जरा स्वरूप बताना चाहते हैं।
आप ऐसा मत समझना, आप सब द्रव्यों में एकत्व बुद्धि करके रखे हैं, हाँ? नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आप ऐसा मत समझना पुद्गल में ही मेरी अहम बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, आकाश में भी है कि मैं आकाश का कार्य करता हूँ, ऐसा हम मानते भी है। हाँ जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल बुद्धिपूर्वक। देखो क्या बात हुई कि हम एक हॉल में गए थे, आप भी थे मेरे साथ में, वो गोरेगांव कौन सा गिरगांव में, तो वहाँ गए थे। तो हम पहुँचे तो मेरे पहले ये भाई साहब गए थे, तो वहाँ गए तो बोले आओ पंडित जी आओ बैठो बैठो, अरे जगह नहीं, नहीं नहीं मेरी जगह पे बैठो। फिर आते वक्त बोला देखो तो वहाँ 3 घंटा बैठना पड़ा, मैंने आपको जगह दी इसलिए आपका अच्छा हुआ। तो अवगाहना आपने दी हा? क्या तो मैं आकाश द्रव्य का कार्य करता हूँ, ऐसे एकत्व बुद्धि हर एक द्रव्य में है, मैं सबको यहाँ गाड़ी में लेके आया हूँ, तो गति में कौन निमित्त है? ख्याल में है भाई, बहुत गहराई है। चलो एक मिनट बाद, हाँ।
तो यहाँ कहते हैं इन छह द्रव्यों में से, यहाँ तो छह द्रव्य बताए उसके लक्षण भी बता दिए, इन छह द्रव्यों में से यहाँ प्रकृत में यानी सांप्रत में यानी या हाल में, हाल यानी वर्तमान में अपना जो विषय चल रहा है उसमें किस द्रव्य से प्रयोजन है, क्या आप छह द्रव्यों की संख्या बताएंगे? अर्थात किस द्रव्य के द्वारा प्रकृत विषय कहा जाएगा, कौन सा विषय अपना संख्या प्ररूपणा का? तो संख्या प्ररूपणा में कौन से द्रव्य की बात चलेगी? हाँ, तो वहां कहते हैं कि सत प्ररूपणा अनुयोग द्वार में 14 मार्गणा स्थानों के द्वारा जिस जीव द्रव्य के 14 जीव समासों के अस्तित्व का निरूपण कर आए हैं, प्रकृत में उसी जीव द्रव्य से प्रयोजन है। इसकी चर्चा, इसका अर्थ हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा।